नमस्कार भारत, तारीख 30 जून दिन मंगलवार, मैं हूं विनीत खरे। ग्रीस के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने का आज आखिरी दिन। सरकारी दावों के बावजूद लोगों में डर। अर्धसैनिक बलों के लिए योग जरूरी बनाने का फैसला कितना सही?
ये इस तरह के ऑर्डर जो हैं, गृह मंत्रालय को इशू करने नहीं चाहिए। ये बताता है कि इनको कुछ भी पता नहीं कि पुलिस किस तरह से काम कर।
गुजरात में आई बाढ़ से वन्य जीवन पर असर। चेन्नई मेट्रो के महंगे भाड़े के बावजूद लोगों में उत्साह। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े विदेशी छात्रों की उम्मीदों पर एक खास रिपोर्ट।
सांस्कृतिक दृष्टि से वो अपने को समझते हैं कि घर से परे उनका एक नया घर है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं।
साथ में विंबलडन से मैचों का ताजा हाल और अखबारों की सुर्खियां भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अविनाश दत्त से। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सीप्रास ने कहा है कि अगर रविवार को होने वाले जनमत संग्रह में ग्रीस की जनता यूरोजोन के प्रस्तावों को मानने पर सहमति जताती है तो वो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन वो अपना पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि खर्चों में कटौती के जो प्रस्ताव ग्रीस को मिले हैं वो देश के लिए अपमानजनक हैं और वो उन प्रस्तावों को लागू करने के लिए पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ग्रीस को कोई यूरोजोन से निकालना चाहेगा। सोमवार को इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों ने रैली निकाली थी। आज इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले ग्रीस में प्रदर्शन करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि देश की सरकार अमेरिकी क्षेत्र पोर्टो रिको की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। पोर्टो रिको कर्ज चुका पाने की हालत में नहीं दिख रहा है। कैरेबियन आइलैंड के गवर्नर अलेखांड्रो ग्रासिया पडेलिया ने कहा है कि पोर्टो रिको 72 अरब डॉलर नहीं चुका सकता। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा,
There's no one in the administration or in DC that's contemplating a federal bailout of Puerto Rico.
न वॉशिंगटन में न पोर्टोरिको में कहीं कोई केंद्रीय आर्थिक सहायता के बारे में विचार कर रहा है, पर हम पोर्टोरिको के साथ मिलकर कोई रास्ता खोजने के लिए कटिबद्ध हैं। पोर्टोरिको के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए देश का वित्त विभाग पोर्टोरिको को अपनी विशेषज्ञ सलाह दे रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विकिलीक्स ने अमेरिका द्वारा फ्रेंच मंत्रियों की जासूसी से जुड़े कुछ और दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। विकिलीक्स का कहना है कि इन दस्तावेज से यह साबित हो जाता है कि अमेरिका ने दो फ्रेंच वित्त मंत्रियों और आर्थिक मामलों से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की जासूसी की। विकिलीक्स के अनुसार अमरीका ने ऐसा फ्रांस के निर्यात, व्यापार और बजट से जुड़ी बातचीत पर नजर रखने के लिए किया। अभी एक सप्ताह पहले ही फ्रांस की सरकार ने अमरीका के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की थी। ऐसा सरकार ने उन खबरों के सामने आने के बाद किया था जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला और उनके दो पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों की जासूसी की थी। बीबीसी को बताया गया है कि पिछले साल नाइजीरिया में जिन स्कूल की बच्चियों को अगवा कर लिया गया था, उन बच्चियों को अगवा करने वाले जिहादियों ने बच्चियों को ईसाइयों के कत्ल करने और दूसरे अत्याचार करने में लगा रखा है। ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तीन महिलाओं ने दावा किया है कि वो उसी कैंप में थी जहां बोको हराम ने अगवा करके लाई बच्चियों को रखा था। इस दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं की जा सकी है। इसराइल के पश्चिमी तट के इलाके में हुई गोलीबारी में 4 इसराइली लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपात सेवाओं के अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों पर चलती गाड़ी से गोलियां बरसाई गई हैं, ऐसा महसूस होता है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। ग्रीस के लिए जहां आज अंतर्राष्ट्रीय कर्ज चुकाने की समय सीमा का आखिरी दिन है, वहीं दूसरी ओर यूरोजोन और ग्रीस दोनों के तेवर कड़े हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ग्रीस को यूरोजोन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ग्रीस में रविवार को आर्थिक सहायता के लिए खर्च में कटौती और करों में बढ़ोतरी की शर्तों पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। जहां ग्रीस में लोग डरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल ने भी ग्रीस के प्रति सख्त रुख अपनाया हुआ है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी खबरों का सार सुनिए अविनाश दत्त से।
यूरोपीय संघ के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ग्रीस को और आर्थिक सहायता चाहिए तो वहां के लोगों को रविवार को होने वाले जनमत संग्रह में उनके प्रस्ताव का समर्थन करना होगा। जर्मनी के वाइस चांसलर सिग्मार गैब्रियल का कहना है कि ये जनमत संग्रह ग्रीस के यूरोजोन में रहने या नहीं रहने के बारे में है। जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगैंग श्वाइबले ने कहा,
Griechenland hat jetzt auch angekündigt, den IWF nicht zu bezahlen.
ग्रीस अब कह रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा नहीं लौटाएगा और पहले जनमत संग्रह करेगा। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जनमत संग्रह है किस बारे में। हमने पूछा कि अगर जनता ने कटौती प्रस्तावों का समर्थन किया तो ग्रीक वित्त मंत्री ने उत्तर दिया कि वो जनता की बात मानेंगे। हम कैसे उनका भरोसा करें, वो भी तब जब ग्रीक जनता को वो हमारे प्रस्तावों का विरोध करने के लिए साफ साफ कह रहे हैं। जर्मन वित्त मंत्री वोल्फगैंग श्वाइबले के शब्द। बावजूद तमाम चेतावनियों के ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि अगर ग्रीस की जनता यूरोजोन के प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो सरकार उसका सम्मान करेगी, लेकिन उस सूरत में वो अपना पद छोड़ देंगे और कटौती प्रस्तावों को अपनी कलम से नहीं लागू करेंगे। सीप्रास ने कहा कि कर्ज देने वालों ने उन्हें प्रस्ताव पकड़ा दिया जिसमें ग्रीस की समस्याओं का कोई हल था ही नहीं। उन्होंने देश के लोगों को इस जनमत संग्रह में समझौते के खिलाफ मत देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग भारी संख्या में इस समझौते को नकार देते हैं तो वो ज्यादा ताकत के साथ कर्ज देने वालों से बातचीत कर पाएंगे। इस तमाम कोलाहल के बीच ग्रीस के लोग उलझन में हैं। ग्रीस के आम लोगों से बात करने पर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं।
The news, terrorized a bit,
पहले शख्स ने कहा कि लोग डरे हुए हैं। उसने उन खबरों का जिक्र किया जो हर तरफ ग्रीस में दिखाई जा रही हैं कि ग्रीस दिवालिया होने को है, दिवालिया हो गए तो ऐसा होगा, दिवालिया हो गए तो वैसा होगा। वहीं एक दूसरे आदमी ने कहा कि उसकी दादी बाजार नहीं जा पा रही हैं और वो अपने परिवार के भविष्य को लेकर बेहद डरा हुआ है, चिंतित है। वहीं एक तीसरे शख्स ने कहा कि उसे ग्रीस की सरकार की टकराव मोल लेने की नीति ठीक लगती है क्योंकि पिछली सरकारों ने जिस तरह से कर्ज देने वालों की सभी बातें मानी उससे लोगों का कुछ भला हुआ, उसे ऐसा नहीं लगता।
ग्रीस में आर्थिक संकट जारी। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रहे थे अविनाश दत्त। और अब कुछ भारतीय खबरें। भारत सरकार ने अर्धसैनिक बलों के लिए योग को जरूरी बना दिया है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि अब तक इस फैसले को लागू करने की दिशा में क्या कुछ किया गया है। निखिल रंजन ने आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल से पूछा कि इस फैसले को लागू कर पाना सुरक्षा बलों के लिए व्यवहारिक रूप से कितना मुमकिन है।
पैरामिलिट्री फोर्सेज में ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत पहले से ही चल रहा है, ये फिजिकल फिटनेस के जो ट्रेनिंग के साथ साथ जो काम रहता है उसके अंदर रखा गया है। पर जब ये आप कहीं जा रहे हैं किसी ऑपरेशन के अंदर तो ये जो है योगा जो है ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो हैं सुबह सुबह जो है कोई परेडे नहीं करते जहाँ पे इस तरह से कसरतों का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और जहाँ जंगलों में जब काम करना पड़ता तो वहाँ योगा जो है जब किसी को अगर खास मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए, तभी वो अपने लिए कर सकता है और उसके लिए जो है कोई ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अपने मन की भावना है कि हाँ अपने आप अपनी हेल्थ जो है उसको ठीक रखना है। तो जो योगा ट्रेनिंग के समय जो है सिखा दिया जाता है वो इस्तेमाल हो जाता है। तो ये इस तरह के ऑर्डर जो है ये गृह मंत्रालय को इशू करने नहीं चाहिए। ये बताता है कि इनको कुछ भी पता नहीं कि पुलिस किस तरह से काम करती
है। जो उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है उसके अलावा भी तो वो रेगुलर जो एक्सरसाइज के लिए जगह या समय दिया जाता है उसका कितना हिस्सा रहता है जिसमें कि वो हर दिन व्यायाम के लिए निकालते हैं,
ये कहना मुश्किल है क्योंकि ऑपरेशन ड्यूटीज के अंदर जो है कोई बीच में आराम करने की ब्रेक अलग से खास नहीं होती। जब आप एक जा रहे हैं कि कहीं तो आप जो है ये ख्याल रखेंगे कि आपकी जिंदगी मौत का सवाल हो रहा है कि आप इस तरह के गृह मंत्रालय के जो है आदेश उसका आप पालन करेंगे कि कसरत करो रास्ते में। ये नहीं है, जब आप फुली आर्म्ड हैं, आपके पास जब असला है तो आप उसकी हिफाजत आपको करनी है। और ये जो है जहां मौका मिलता है वहां पे चाहे वो नाश्ता कर लें, चाहे वो अपनी हेल्थ बना लें। ये ड्रिल जो है जो कायदे कानून हर रोज के होते हैं उस समय वो छोड़ दिए जाते हैं। तो योगा जो है उस वो अपनी जगह जो है बिल्कुल अच्छी चीज है, पर उसका इस्तेमाल जो है गृह मंत्रालय के आदेशों से नहीं होगा। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इतना ज्यादा उनका जो है ड्यूटी चला रहे हैं कि इस तरह के जो आराम की जगहें जो होती हैं, समय जो होता है वो कम होता जा रहा है।
ये थे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल, उनसे बात की थी हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने। गुजरात में आई बाढ़ के कारण जहां 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, राज्य के वन जीवन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है। गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अमरेली से अंकुर जैन की एक खास रिपोर्ट।
पिछले सप्ताह गुजरात में आई बाढ़ में जहां 70 से अधिक लोग मारे गए, वहीं हजारों की संख्या में वन्य प्राणी और पशु भी इसकी चपेट में आए हैं। बाढ़ गुजरात के सौराष्ट्र में आई थी जहां गीर नेशनल पार्क स्थित है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार अमरेली जिले में पड़ी। यह वही इलाका है जिसे गीर के शेर ने जंगल से बाहर निकल अपना घर बनाया है। भारी बारिश के बाद इस इलाके में 600 से अधिक गांव डूब गए थे। राजन जोशी जंगल से बाहर रहते शेरों के लिए अमरेली में एक नेचर क्लब चलाते हैं। जोशी ने बताया,
सौराष्ट्र की जो सबसे बड़ी नदियां है उसमें शेत्रुजीता नाम आता है, और जो एशियाटिक लायंस है वो शेत्रुजी नदी पर कॉरिडोर बनाकर माइग्रेट हुए है। तो शेत्रुजी नदी में अभी बहुत ज्यादा बाढ़ आई है। यू कैन सी द 20 फीट की जो दीवार है वो ही आ रही है मोजे के रूप में, और आती है और सब कुछ लेकर चली जाती है। उस टाइप का नजारा उस समय था। टोटल 11 शेर की डेड बॉडी भी मिल रही है, एंड मोर देन 1000 ब्लू बुल्स ऑल्सो किल्ड इन दिस बिकॉज ऑफ दिस, एंड ब्लैकबक बहुत ज्यादा मर रहे हैं। कई सारे एनिमल्स इस बाढ़ की वजह से मर रहे।
हालांकि जंगल विभाग के मुताबिक अभी 9 शेरों की ही लाश मिली है। मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि एशियाई शेरों की यह प्रजाति सिर्फ गुजरात में ही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन शेरों की 2015 में संख्या करीब 523 थी, जिसमें से कई जंगल से बाहर हैं। अमरेली भावनगर के जंगल और गांव में 140 के करीब शेर रहते हैं। जूनागढ़ वन्य जीवन विभाग के मुख्य वन संरक्षक अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि शेरों का इस तरह मरने का हादसा पहली बार हुआ है और यह बहुत चिंता का विषय है।
9 बॉडीज ऑफ लायंस
अब तक कुल मिला के शेरों के 9 शव बरामद हुए हैं, इसमें से 5 तो केवल अमरेली जिले से ही मिले हैं। हम बेहद चिंतित हैं, कुछ ना कुछ करना ही होगा, किसी न किसी किस्म की योजना बनानी ही होगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
सिंह का कहना है कि जंगल विभाग ने मोटे मोटे तौर पर इस इलाके के सभी शेरों को ढूंढ लिया है और सिर्फ 2-3 बच्चे ही नहीं मिले हैं, लेकिन अमरेली में रहते लोग इस बात से सहमत नहीं है। अमरेली के लीलिया में रहते मनोज पेशे से अध्यापक है और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए भी काम करते हैं। वे कहते हैं,
बगसरा धारी विस्तार नी अंदर जे जरूर करता वधार એટલે કે 25 થી 27 इंच वर्षात
अभी तक कई सारे शेर और उनके बच्चे दिखाई नहीं दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शेरों की मौतों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने चाहिए। आज कई सारे इलाके हैं जहां 10-10 फीट मलबा जमा है, इसमें शेर क्या, हाथी भी दबा हो तो पता नहीं लगेगा। कई सारे मरे हुए शेरों का कुछ पता कभी लगेगा ही नहीं, इसलिए सरकार को प्रभावित इलाकों में शेरों की फिर से गिनती करानी चाहिए।
मनोज और उनके दोस्तों ने बाढ़ में मारे गए लोग और शेरों के लिए अगले महीने एक हवन का आयोजन किया है। शेरों की सुरक्षा के लिए कई वन्य विशेषज्ञों ने सभी शेर एक जंगल और इलाके में रहे तो खतरा ज्यादा है ये कहा था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनोपालपुर जंगल में भेजने के लिए कहा था, लेकिन गुजरात सरकार ने इस फैसले पर असहमति दिखाई थी। बाढ़ में शेरों की इस मौत से गुजरात सरकार पर अब शेरों को मध्य प्रदेश भेजने के मुद्दे पर दबाव बन सकता है। अंकुर जैन, BBC अमरेली।
चेन्नई में सोमवार को मुख्यमंत्री जयललिता ने पहले चरण के 10 किलोमीटर लंबे एक मार्ग पर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया। चेन्नई में मेट्रो रेल का किराया दूसरे सार्वजनिक परिवहन की तुलना में महंगा है, इसके बावजूद लोगों ने इसका खूब लुत्फ उठाया। एक रिपोर्ट के साथ इमरान कुरैशी।
चेन्नई के लोगों की मुराद सोमवार को पूरी हो गई। चेन्नई की मेट्रो रेल का उद्घाटन आखिरकार मुख्यमंत्री जयललिता के हाथों हुआ, और वो भी एक अलग अंदाज में। उद्घाटन का मौका भले ही जयललिता को मिला, लेकिन इसका सपना उनकी विरोधी डीएमके ने देखा था। बेंगलुरु की तरह ही चेन्नई में भी पहली मेट्रो रेल एक महिला ने चलाई। पहली मेट्रो रेल चलाने वाली 29 साल की प्रीति ने कहा, ये तो अच्छा अनुभव था। मैंने करीब 5 घंटे ट्रेन चलाई, हालांकि काम 8 घंटों का होता है। मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में करीब 5 महीनों तक हुई और उसके बाद चेन्नई में 1 साल हुई। ये थे प्रीति के शब्द। मेट्रो रेल के ऑपरेटर के अलावा यात्री भी इसके सफर का आनंद लेने के बाद बहुत खुश थे। चेन्नई के संगीत उद्योग से जुड़े अभिषेक ने कहा, हमें तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। चेन्नई पर हमें गर्व है। दिल्ली की मेट्रो में थोड़े साल पहले हम गए थे, चेन्नई की मेट्रो रेल भी उतनी ही अच्छी है। ये तो महान सवारी थी। ये थे अभिषेक के शब्द। मेट्रो तो शुरू हो गई, लेकिन इसका टिकट महंगा होने की बात कही जा रही है। हालांकि पहले दिन के यात्री तो इतने खुश हैं कि उन्हें कीमत ज्यादा नहीं लगी। अभिषेक के साथ ही जोन्स रूपर्ट भी उन्हीं में से एक हैं।
Yeah, it was lovely. I enjoyed it because it was kind of very smooth, you know. I had never gone in metros in my.
अच्छी सवारी थी, लेकिन मुझे कुछ खास महंगा नहीं लगा। हालांकि थोड़े लोग बात कर रहे थे कि टिकट महंगे हैं। ये थे जोन्स रूपर्ट के शब्द। अलंदूर से कोयम्बेडू का रास्ता करीब 10 किलोमीटर का है और 10 किलोमीटर के रास्ते के लिए यात्रियों को 40 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। फिलहाल मौका भले ही खुशी मनाने का हो, लेकिन टिकटों की ऊंची कीमत यात्रियों को जरूर चुभेगी। बेंगलुरु से इमरान कुरेशी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दाखिले का समय है। राजधानी के इस विश्वविद्यालय में एक बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जो विदेशों से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। छात्रों को आखिर यहाँ क्या अच्छा लगता है जिसके लिए वो अपने देश से दूर यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। इसके साथ ही उनकी दिक्कतों का जायजा लेने की कोशिश की है अमर शर्मा ने।
दिल्ली विश्वविद्यालय में 73 देशों के करीब 1200 विदेशी छात्र और छात्राएं अलग अलग विषयों में डिप्लोमा, स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से करीब 130 को सरकारी छात्रवृत्ति मिली हुई है। विदेश से आकर पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना, ये सवाल हमने नेपाल से आए राजदीप महत से पूछा, जिन्होंने अभी बीकॉम की परीक्षा पास की है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे नेपाल का यूनिवर्सिटी से थोड़ा अच्छा है। मेरा जो उम्मीद था उससे भी मैंने अच्छा पाया यूनिवर्सिटी को। बहुत एक्सपोजर मिला यहाँ पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मेंबर सोसाइटीज़ है और एंटरप्रेन्योरशिप सेल, रोटरैक्ट क्लब बहुत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सस्ता भी है और अच्छा भी है।
अफ्रीकी देश घाना से आए 26 वर्षीय यूजेन तोभिएभा ने अप्लाइड साइकोलॉजी से बीए पास किया है।
यहाँ पढ़ाई का माहौल काफी अच्छा है, मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि कभी कभी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी में लेक्चर दिए जाते थे और कभी कभी तो सिर्फ 15% हिस्सा ही अंग्रेजी में होता था, जिससे थोड़ी समस्या हुई। हालांकि क्लास के सहपाठियों ने काफी मदद की और हिंदी में दिए गए लेक्चर को मुझे समझने में काफी मदद की। यहाँ टीचर बहुत अच्छे हैं। फीस की बात करें तो दूसरे निजी विश्वविद्यालयों की तुलना में डीयू में पढ़ाई करीब 10 गुना तक सस्ती है।
मिस्र से आए 25 साल के अम्र इलागमी ने रसायन शास्त्र से एमएससी की पढ़ाई की है और वे परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। अम्र दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़ाई को बहुत ऊंचे स्तर का बताते हैं, हालांकि वे यहाँ के सिलेबस को काफी बड़ा मानते हैं।
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अरब कंट्री दे कैन सक्सेस हियर।
अब इराक, अफगानिस्तान से आए बच्चों के लिए यहाँ से विज्ञान में मास्टर्स की पढ़ाई कर पास करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अरब देशों में हम बहुत छोटा कोर्स पढ़ते हैं और यहाँ सिलेबस बहुत भारी भरकम है। कम से कम मेरे लिए पास करना बहुत मुश्किल है।
अम्र खाली समय में अपने देश का संगीत सुनना पसंद करते हैं। वे यहाँ के खाने को हमेशा याद रखेंगे।
यहाँ का खाना बहुत मसालेदार है और इसलिए मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ।
मॉरिशस से आई 23 साल की यताशा सिधियान ने बीए हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी कर ली है। यताशा को यहाँ पढ़कर काफी अच्छा लगा।
ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज बहुत ही अच्छा है। मैंने अपना 1 साल वहाँ पे किया हिंदी ऑनर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, लेकिन यहाँ का सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक होम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको दे ट्रीट यू जैसे आप बच्चे हो वैसे जैसे स्कूल में होता है वैसे होता है लेकिन मॉरिशस में दे ट्रीट यू लाइक यू आर रियली यू एंटर्ड यूनिवर्सिटी.
वे हिंदी फिल्में देखकर बड़ी हुई हैं इसलिए मॉरिशस और भारत में उन्हें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता लेकिन नाइजीरिया के रहने वाले और अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी कर रहे 37 साल के खलील बापा जी के लिए दिल्ली में जीवन उतना सहज नहीं रहा. दिल्ली उन्हें कैसा लगा इस पहले ही सवाल के जवाब में वे कहते हैं
Let me say, sometimes I feel bad and sometimes I feel happy because of the environment and because of the people you communicate and you always come together.
यहाँ लोगों से मिलने और बात करने पर मुझे कभी बहुत खुशी होती है और कभी बहुत खराब लगता है. अफ्रीकी लोगों की काली चमड़ी की वजह से ये समस्या होती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये समस्या कभी नहीं होती क्योंकि यहाँ लोग शिक्षित हैं. अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल में भारतीयों समेत कई देशों में लोग रहते हैं. यहाँ हम सब दोस्त हैं, साथ खाते हैं, खेलते हैं. लेकिन जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं या फिर मेट्रो में सफ़र करते हैं तो कई बार हम प्रताड़ित हुए हैं और यहाँ तक कि कभी कभी गाली भी सुनी है.
दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉरेन स्टूडेंट्स रजिस्ट्री में डिप्टी डीन डॉक्टर अमृत कौर बसरा कहती हैं
ये मैंने महसूस किया पिछले एक वर्ष के अंतराल में जब मैं इसके साथ जुड़ी हूँ कि सांस्कृतिक दृष्टि से वो अपने को समझते हैं कि घर से परे उनका एक नया घर है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय है. वो सुरक्षित महसूस करते हैं, वो जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं अध्ययन कर सकते हैं, उनको सहायता मिलती है. और जो हमारे इस वक्त कुलपति जी हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह, उन्होंने विशेष प्रयास किया है कि उनको प्रत्येक हर एक तरह की सुविधा दी जाए और हम उनको अपने कह सकते हो कि एम्बेसडर की तरह लेते हैं जो कि ग्लोबल सिटीजन तो हैं ही और निश्चित रूप से अध्ययन करने का तो एक ऐसे सेतु का काम करेंगे जो उनके देश के हित में भी होगा और हमारे देश के हित में भी होगा.
ये विदेशी छात्र जब भारत से अपने देश लौटेंगे तो यहाँ के अनुभवों को अपने दिलों में संजो कर ले जाएंगे और जिंदगी की किसी मोड़ पर जब कभी कोई भारतीय उनसे टकराएगा तो उनकी सभी पुरानी स्मृतियाँ उन्हें जरूर याद आएंगी.
ये रिपोर्ट पेश की थी हमारे साथी अमर शर्मा ने. और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं. अविनाश, बहुत सारे अखबार पढ़ चुके हैं और दैनिक भास्कर सबसे ऊपर.
जी, इसमें एक आज ये जो ग्रीस की खबर है ये कमोबेश सभी जगह है. हमने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत उसी से की. ये जो इसकी हेडलाइन बड़ी रोचक है, सिकंदर के ग्रीस का मुकद्दर रूठा. सिकंदर ग्रीस के ही रहने वाले ऐसा माना जाता है और ये खबर कमोबेश हर जगह है. किसी अखबार में लिखा है कि ग्रीस में, जिसे यूनान भी कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान है उसमें लिखा हुआ है यूनान में दूध ब्रेड के लिए भी लाले पड़े. कहीं लिखा हुआ है कि बैंकों में जो है ताले लगे हुए हैं ग्रीस की. और ये भी एक अखबार में खबर है कि किस तरह से भारत सरकार ने ये कहा है कि रिज़र्व बैंक को कि वो तैयार रहे कि अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर आता है, कोई मंदी आती है, तो विदेशी निवेशक अगर यहाँ से भारत से पैसा निकाल के भागना चाहें या किसी तरह से कहीं और पैसा लगाना चाहें तो कोई अव्यवस्था का आलम ना हो. तो काफ़ी चिंतित है इस बारे में. खबर पाइनियर में है, अनईजी काम इन इंडिया. भारत में एक अजीब सी शांति है, ऐसी बात पाइनियर की हेडलाइन कहती है. इसके अलावा ये खबर भी हर जगह है कि रहाणे जो है क्रिकेट की जो जिम्बाब्वे जाने वाली टीम है वो उसके कप्तान हो गए हैं. और ये खबर भी है. इसके अलावा हिंदुस्तान में एक छोटी सी खबर है, ये खबर सभी जगह है लेकिन छोटी सी खबर, विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी छोड़ी. विजेंदर सिंह जो देश के सबसे लोकप्रिय और बांके मुक्केबाज थे, जो कि फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, उन्होंने मुक्केबाजी छोड़ दी है. मुक्केबाजी नहीं छोड़ी, उनने देश के लिए, भारत के लिए खेलने का ऑप्शन छोड़ दिया है. अब वो प्रोफेशनल हो गए हैं, यानी अब वो पैसे के लिए खेलेंगे और वो दुनिया भर में जगहों पे, अलग अलग जगहों पर जाकर खेलेंगे. इसके अलावा एक और खबर है कि मीणा की नियुक्ति पर रोक से कोर्ट का इनकार. मीणा दरअसल वो अधिकारी हैं, मुकेश कुमार मीणा, जिनको कि गवर्नर नजीब जंग ने, दिल्ली गवर्नर नजीब जंग ने उनने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में मुखिया के तौर पर पदस्थ किया था. आप सरकार जो केजरीवाल की सरकार है वो ऐसा कतई नहीं चाहती थी. केजरीवाल की सरकार इस बात को लेके हाईकोर्ट में गई और हाईकोर्ट से उनको निराशा हाथ लगी. अमर उजाला में एक खबर है जो दूसरे अखबारों में थोड़ी छोटी है, लेकिन ये खबर है कि प्रियंका वाड्रा आरटीआई के दायरे में, शिमला स्थित जमीन की सूचना न देने पर हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग का फैसला। दरअसल किसी सज्जन ने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी थी कि प्रियंका गांधी की वाड्रा की शिमला की छरबड़ा करके कोई इलाका है, वहाँ पे ज़मीन की क्या जानकारी है। सरकार ने ये कहते हुए देने से इनकार कर दिया था कि इससे प्रियंका की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सूचना आयोग ने इस बात को नहीं माना। और इसी खबर के ठीक नीचे एक और खबर लगी है, ये है बीजेपी की, धौलपुर महल को लेकर राजे निशाने पर। कांग्रेस ने लगाया आरोप कि ललित मोदी के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री, उन्होंने कब्जा कर लिया है इस महल के ऊपर। राजस्थान भाजपा कहना है कि ऐसा कतई नहीं है और वो एकदम बिल्कुल जायज़ है, वो जो भी उनके पास है।
शुक्रिया अविनाश आपका। और अब चलते हैं विंबलडन, जहां प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता विंबलडन के मुकाबले शुरू हो गए हैं। ताज़ा हाल बता रहे हैं अपूर्व कृष्ण।
कल विंबलडन की शुरुआत प्रथा के अनुसार प्रतियोगिता में पहले नंबर के खिलाड़ियों के मैचों से हुई और पुरुषों में नंबर वन नोवाक जोकोविच और महिलाओं में सरीना विलियम्स ने अपने अपने मैच जीत लिए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला जर्मनी के मजबूत खिलाड़ी फिलिप कोल श्राइबर के साथ था। जोकोविच अपना पहला मैच आसानी से जीत दूसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। चौथी वरीयता प्राप्त और फ्रेंच ओपन फाइनल में जोकोविच को हराने वाले स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका भी अपना मैच जीत दूसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। मगर पुरुषों के वर्ग में पहले दिन एक शानदार टक्कर दो पुराने खिलाड़ियों के बीच हुई। 2002 के विंबलडन चैंपियन 34 साल के लेटन हुइट और फिनलैंड के 33 वर्षीय यार्को निमनेन का मैच पूरे 4 घंटे तक चला। पांचवें और अंतिम सेट में जबरदस्त मुकाबला हुआ और अंत में निमनेन ने ये सेट 11-9 से जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां अब उनका मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा। महिलाओं के वर्ग में पहले नंबर की खिलाड़ी और 5 बार की विंबलडन चैंपियन अमेरिका की सरीना विलियम्स का मुकाबला था मार्गरेटा गैस्परमान के साथ। 20 वर्षीय रूसी खिलाड़ी का यह पहला विंबलडन मैच था और ये जानकर कि उनका पहला ही मैच सरीना विलियम्स के साथ है, वो हैरान रह गई थी। सरीना ने मैच 6-4 6-1 से जीत लिया, मगर उन्होंने रूसी खिलाड़ी की सराहना की।
No, not really. I mean, I knew she would be a good player. I can't say I thought she'd be that good, to be honest.
मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा खेलेंगी, पर उसने क्वालिफाइंग दौर में 3 मैच जीते थे और मेरे सामने उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो अच्छा खेली, उसे गर्व होना चाहिए। सरीना विलियम्स के शब्द। महिला सिंगल्स में चौथे सीड की 2004 के विंबलडन चैंपियन रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने भी ब्रिटेन की खिलाड़ी जोहाना कोंटा को आसानी से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। विंबलडन का पहला दिन भारत के लिए भी अच्छा रहा। पुरुषों के डबल्स में रोहन बोपन्ना अपने रोमानियाई जोड़ीदार फ्लोरिन मिर्जा के साथ पहले राउंड का मैच जीत गए। 9वीं सीड की जोड़ी बोपन्ना मिर्जा का मुकाबला अमेरिका और चेक गणराज्य के खिलाड़ियों की जोड़ी से था। अब आज विंबलडन के दूसरे दिन पुरुष सिंगल्स में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी, 7 बार के विंबलडन विजेता और पिछले साल के उप विजेता स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर और 2013 के विंबलडन चैंपियन तीसरी वरीयता के ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरी के मुकाबले होंगे। आज 2 बार के विंबलडन विजेता 10वीं वरीयता के स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल और 6ठी सीड के चेक गणराज्य के खिलाड़ी टॉमस बेडिक भी कोर्ट में नजर आएंगे। भारतीय खिलाड़ियों लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और पूरव राजा को डबल्स मैच खेलने हैं, मगर उनके मैच आज नहीं होंगे। आज बस इतना ही। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि देश की सरकार अमेरिकी क्षेत्र पोर्टो रिको की आर्थिक सहायता नहीं करेगी। कैरेबियन आइलैंड के गवर्नर अलेखांद्रो ग्रासिया पडेलिया ने कहा है कि पोर्टो रिको $72 अरब का कर्ज समय पर नहीं चुका सकता। इसराइल के पश्चिमी तट के इलाके में हुई गोलीबारी में 4 इसराइली लोग घायल हो गए हैं, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपात सेवाओं के अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों पर चलती गाड़ी से गोलियाँ बरसाई गई हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब पर स्कड मिसाइलों से हमला किया है। एक हूती प्रवक्ता जिसका नाम जनरल सहरा लुकमान बताया गया है, उन्होंने कहा है कि स्कड मिसाइलों को सऊदी अरब के रियाद प्रांत में मौजूद एक मिसाइल अड्डे पर निशाना साधकर दागा गया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अविनाश दत्त और स्टूडियो संभाला था देवशीष कुमार ने। मुझे विनीत खरे को दी अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1 घंटे बाद विश्व भारती में।